रोटी है जाती देनी अगलवा रोटीन मॉइस पार्टी वाला रोटीन मॉइस पार्टी वाला रोटीन मनोज क्या रोटीन टीसी चंचा सभी अपना जन्मदिन मना रहे हैं I take great pleasure in welcoming our members Rotary Nagarwal ji, Muralija Nagarwal ji back to our club. हमें बड़ी खुशी है आप जल्दी ठीक हो गए नहीं आपका स्वागत है काफी समय बाद आप आए हैं वेलकम बैक सर आई रिक्वेस्ट माय सेक्रेटरी नाउ टू मेक अ सेक्रेटरी अनाउंसमेंट
देवियों सज्जनों कुंभ करने का सौभाग्य है कि परम श्रद्धे नारायण गोस्वामी जी यहाँ पर चार दिन तक विराजमान रहेंगे और यहाँ प्रेमपुरी आश्रम में प्रातः 8:30 बजे से 10:30 बजे तक और सायंकाल 4:30 बजे से 7 बजे तक बहुत अद्भुत प्रवचन का कार्यक्रम रखा गया है। प्रातःकालीन कार्यक्रम को संचालित करेंगे स्वामी जी के शिष्य सृजनी स्वामी त्रिजेंद्रा जी महाराज 27, 28, 29, 30 तारीख को प्रातः 4 विषयों पर प्रवचन होंगे और सायंकाल 4:30 बजे से 7 बजे तक स्वयं गोस्वामी जी नारायण पाल जी वहाँ पर अपने अमृतवाणी से हम लोगों को प्रसार करेंगे। जिन लोगों को कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी चाहिए मीटिंग समाप्त होने से पहले हमारे कुछ स्वामी जी के जो भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं उनके बारे में जानकारी है सर्कुलर इत्यादि है जो लोग इंटरेस्टेड हों सर्कुलर साथ में लेकर के जाएं और चारों दिन जो लोग भक्ति और प्रेम रस में डूबना चाहते हैं वो प्रेमपुरी आश्रम में जाते हैं सुबह 8:30 से 10:30 बजे और 4:30 से 7 बजे तक काफी रखा है।
स्वामी जी का इंट्रोडक्शन देने के पहले मेरी एक विनती है जिनके पास मोबाइल है प्लीज पुट इट ऑफ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज पुट योर मोबाइल ऑफ और पुट इट ऑन द वाइब्रेटर एंड सेकंड जब ये प्रवचन दें प्लीज डोंट टॉक विद ईच अदर माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन अब मैं राजेंद्र जी से विनती करूंगा वो स्वामी जी का इंट्रोडक्शन
इतने महान संत का परिचय मैं आपसे क्या कर रहा हूँ जब वो आपको संबोधित करेंगे तो उनकी वाणी प्रकाश करते हुए स्वयं उनका परिचय देगी। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि गृहस्थ जीवन में रहकर 56 वर्ष पूर्व नारायण पाल जी ने संन्यास आश्रम में प्रवेश किया। इसके पहले वो एक IPS ऑफिसर थे और मैं एक दृष्टांत आपको याद कराना चाहूँगा। पुलिस ऑफिसर होने के नाते एक दिन एक केस फाइल कहीं हो गई और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में उस केस फाइल की जांच चल रही थी। इनका उत्तरदायित्व था कि वो केस फाइल को ढूंढ करके प्रस्तुत करें और बहुत ढूंढने के बाद भी जब वो केस फाइल नहीं मिली तो इन्होंने अपने नए मुंडे प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण किया और कहा जहाँ मैं हाथ लगाऊँ वहीं फाइल मिल जाए और ऐसा ही हुआ एक चमत्कार हुआ और इन्होंने यहाँ हाथ रखा जो फाइल इनके हाथ में आई वही वो फाइल थी। उसी दिन से स्वामी जी ने निश्चय किया कि जिस प्रभु के स्मरण से ऐसा चमत्कार हो सकता है तो फिर पुलिस की नौकरी में क्या रहता है उनके चरण में जाना जा रहा है अच्छा हुआ और उसी दिन से आध्यात्म की ओर भक्ति की ओर उनके चरण चल पड़े। उन्होंने गुरु के रूप में आचार्य सिंह उपाधि ग्रहण करने वाले श्री केशव सिंह गोस्वामी का सानिध्य प्राप्त किया और आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा रिस्कॉन के श्री प्रभुपाद जी जिनके गुरु भाई के साथी था इनको उन्हीं केशव महाराज जी से शिक्षा प्राप्त हुई थी। गुरु के चरणों में इनका समर्पण गुरु की सेवा में इनका यही होना अगर हम सिंपल अंग्रेजी में कहेंगे गुरु जी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और गुरु जी से सेवा करते करते उन्होंने भारत के संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण किया, अहर्निश राधा कृष्ण भक्ति और चिंतन में लग गए, वृंदावन गौरी उपासना से जुड़े रहे और इस मार्ग पर चलते चलते गोस्वामी जी गंभीर और दृढ़ विचार बन गए। आपको जो लोग संबंधित हैं उनको पता है एक भागवत पत्रिका निकलती है गौरी मठ से, उसके प्रकाशन में भी मार्गदर्शन गोस्वामी जी का रहता है। तीन पुस्तकों का संकलन अब तक कर चुके हैं, जो लेटेस्ट पुस्तक इन्होंने संकलित की है या रूपांतरित की है वैज्ञानिक भक्ति के ऊपर आधारित पुस्तक है जिसका नाम है उज्ज्वल नीलमणि, उसको इन्होंने रूपांतरित किया है और अभी 9 मार्च को ये आठवीं बार संपूर्ण विश्व का भ्रमण कर
16वीं बार
मैंने तो पूरा 50% कर लिया है, 16वीं बार पूरे विश्व का भ्रमण करके लौटे हैं। और जब ये चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थली पर गए नवदीप में, तो जो वहाँ परिक्रमा की वहाँ इनके साथ 10,000 देशी और 600 विदेशी परिक्रमा में साथ में रहे। मानव का पारमार्थिक कल्याण इनका परम ध्येय है। ऐसे परम ज्ञानी संत परम पूज्य आज हमको यहाँ संबोधित करने जा रहे हैं, जैसे पारस पत्थर को छूने से लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है, इस तरह के परम संत के स्पर्श मात्र से हम लोग भी भक्ति के ज्ञान गंगा में बैठ सकते हैं। और देवी और सज्जनों, ऐसा अवसर जो मुझे यहाँ मंच से प्राप्त हुआ है तो मैं उसको छोड़ना नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मैं गोस्वामी जी को अपने हाथों से आज यहाँ ये उपरना पहना कर उनके स्पर्श से अपने आप को भक्ति गंगा में प्रभावित कर संदेश उसको प्रतिपादित करेंगे गोस्वामी जी। पुनः सभी को मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने मोबाइल को या तो वाइब्रेटर मोड पे कर दीजिए या उनको बंद कर दीजिए, जब तक प्रवचन यहाँ पर चले तन्मयता से उनको सुनिए, शायद हम अपने आप को बहुत सफल पाएंगे इस प्रवचन के बाद। धन्यवाद। मैं चाहूँगा हमारे अध्यक्ष महोदय स्वामी जी को
गोस्वामी जी से निवेदन। जिस विषय पे आप बोल रहे हैं, जिस विषय को आप प्रतिपादित करते हैं।
गुरवे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदानि कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवे। परम आदरणीय साउथ बम्बई के रोटरी क्लब के सदस्य सन्यासी जो हमारे साथ में आए हैं, वैष्णव और वैष्णवीजन, मेरा यथाजोग अभिवादन ग्रहण करें। मैं सर्वप्रथम रोटरी क्लब के सदस्यों को विशेष धन्यवाद देता हूँ और इनका आभारी हूँ कि बम्बई में मुझे रोटरी क्लब में बुलाकर कुछ श्रवण करना चाहते हैं, जिसको मैं देश में विदेश में सर्वत्र ही इसके संबंध में बोलता हूँ और सारे विश्व के लोग इसको सुन करके चमत्कृत हो उठते हैं। हमारे सामने ये जो आए हैं बड़े बड़े विद्वान स्कॉलर हैं, भागवत के बड़े विद्वान ऋषि, उपनिषद, वेद, उपनिषद, गीता, भागवत सबके मार्मिक विद्वान भी हैं। हमारे साथ में बहुत दिन रहने से इन्होंने हमारे विचारों को, वैदिक संस्कृति को ग्रहण किया है। मैं अपने ये लोग हमारे पीछे पीछे जाते हैं, जहाँ विदेशों में जाते हैं हमारे साथ में 300-400 हमारे साथ में लोग चलते हैं, विमान पूरा ही हम लोगों का ही हो जाता है। तो मैं उसके संबंध में जो हमारे प्रचार का क्या विषय है, जगत में सुख और शांति कैसे आए, सभी लोग कैसे सुखी रह सके, हम सभी सुख चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, किंतु हो रहा है विपरीत। देखो जगत में नाना प्रकार के धर्म नहीं है, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब धर्म नहीं है, ये जीने की एक कलाएं हैं, एक सामाजिक व्यवस्थाएं हैं देश विदेशों में, जिसे शांतिपूर्ण रह करके हम कुछ इसलिए मनुष्य जन्म हुआ है इसे अनुभूति कर सके। जगत में एक ही प्रेम, प्रेम नामक धर्म है, एक धर्म है प्रेम, विशुद्ध गॉड इज लव, लव इज गॉड। प्रेम यदि न रहे, सब कुछ रहे, तो जीवन फीका है। पत्नी पति परस्पर बड़े सुंदर हो और परस्पर प्रेम न हो तो जीवन सूना रह जाता है। इसी प्रेम का नाम आनंद कह सकते हैं, विशुद्ध आनंद, शांति कह सकते हैं, सुख कह सकते हैं। इसी के विभिन्न पर्याय हैं, जिसको कृष्ण भी कहते हैं, क्राइस्ट भी, क्राइस्ट उनको भी कहते हैं, असल में बुद्ध वही हैं यथार्थ, वो हम लोग क्यों हमारी समझने में कुछ गड़बड़ी हो गई। हम समझ रहे हैं ये हार चाम रक्त पैखाना पेशाब टट्टी टीप इससे बने हुए घोंसले में मैं वही मैं हूं। हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, गीता, भागवत ये नहीं कहते। जो लोग ऐसा मानते हैं शरीर मैं हूं, उन लोगों को अशुभ कहा गया। और जो लोग इसके ठीक भी पड़े, इससे अतीत आत्मा और परमात्मा का ध्यान रखते हैं और इसलिए जीवित रहते हैं कि हम साधन भजन करके परमात्मा से मिले, परमात्मा में मिले नहीं, परमात्मा से मिले। आज तक पृथ्वी में हमारे शास्त्र में कोई भी उदाहरण नहीं है जो उनमें मिल करके एक हो गया हो, कोई भी उदाहरण। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि जीव ही ब्रह्म है, सत्तम मत, किंतु ये विचारों का जो अर्थ है वो गलत है, ये ठीक नहीं। हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड है, भगवान के अंश है। जब तक अपूर्ण वस्तु पूर्ण में नहीं मिल जाती तब तक वो सुख और शांति नहीं हो सकता। एक उदाहरण के लिए समझिए, यदि कोई प्रश्न उठे तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं, मैं समाधान करने की चेष्टा करूंगा, नहीं तो वस्तु निरस्त हो जाएगी। तो क्या बतला रहा था,
अपूर्ण वस्तु जब अपूर्ण वस्तु नहीं
मिलती, जैसे एक उदाहरण के लिए लीजिए, पृथ्वी का कोई भी अंश, पत्थर, ढेला, मिट्टी का, लकड़ी, कुछ भी लीजिए और आकाश में खूब जोर से फेंकिए, यदि टिकने के लिए कोई वस्तु नहीं है तो वो आगे जाएगी पृथ्वी पर। क्यों? हम कहते हैं कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो खेच लेती है। किंतु बड़े आश्चर्य की बात है,
बैलून में हवा भरिए वो कहाँ जाएगी? वो नीचे नहीं जाएगी, वो ऊपर उड़ जाएगी। आग जलाइए, उसका जो फ्लेम होता है वो ऊपर की तरफ उठता है, क्योंकि पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। पानी कहीं भी फैलाइए, अंत में महासागर में जाएगा। एक बूंद भी गिराइए, पेपर होकर के उड़ करके फिर आकाश से गिरेगा। यहाँ का पानी नदियों में, नदियों से सागर में, सागर से फिर पेपर होकर के जाएगा, फिर क्यों करके। उसी तरह से जब तक जीव जो भगवान का अंश है, जीव अंश है और फूल पूरा है, वो ब्रह्म है। भगवान पूर्णम इदम अदः, पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदिच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवतिष्ठते। भगवान पूर्ण है। कुछ लोगों की धारणा है ये जगत सुना है और सुनने से ये जगत हुआ, किंतु यह थोड़ी बहुत ही गंदी है, झूठ है। सुनने से कुछ भी पैदा नहीं हो सकता और न तो हुआ। जागरण इत्यादि की जो थ्योरियां हैं ये संपूर्ण सिद्धांत और गलत हैं। पहले न जाने कीड़े मकोड़े थे, फिर बंदर हुए, बंदर से बनमानुष, बनमानुष से मनुष्य, अब क्यों नहीं हो जाता दूसरा कुछ? सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्य है। और इसलिए है कि हम इस पर विचार करें, जो एक्सपर्ट इस विषय में है उनसे विचार करके इस चीज को हम रियलाइज करें कि हम हार्ट जाम मानस के पुत्र नहीं हैं। इसके अंदर में हम आत्मा है, चेतन है, अजर है, अमर है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरा। सुख का भंडार है ये। गीता में भी कहा ममई वंशो जीव लोके जीव होता है। तो जब तक जीव ये नहीं समझेगा जिसके अंदर में मैं आत्मा हूं, परमात्मा से हमारा मिलन होगा और मिलन होना चाहिए, तब तक उसे सुख और शांति मिलेगी। वही जो प्रभु हैं मैंने पतला पैर बतलाया। इसलिए हमारा ये जन्म हुआ इस चीज को रियलाइज करने के लिए, इसकी अनुभूति करने के लिए। किंतु आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपाट, उठने लगे, गया वो। आज देख रहे हैं शांति के नाम पर कैसी अशांति हो रही है। एक आदमी शांति के लिए दूसरे पर आक्रमण कर रहा है, असल में शांति के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं, प्रेम के लिए नहीं। प्रेम में लेना नहीं होता है, देना होता है सर्व। इसलिए पहले इस चीज को समझा जाए, यदि भगवान से प्रेम होगा, प्राणी मात्र से प्रीति होगी, उसे लड़ने की जरूरत, वो तो अपना सर्वस्व देगा। इसलिए हमारी संस्कृति में ये सब चीजें नहीं है। इसलिए उद्धव संवाद जानने के लिए ये सब चीजें जरूरी। उद्धव संदेश प्रेम का संदेश, आनंदम अहम ब्रह्मा, ब्रह्मानंद रसो वैस, वह रस पूर्ण है, रस ही है, रस का स्वागत करने वाला भी वही है। वही प्रेम इस धराधाम पर उतरता है कृष्ण के रूप में। कृष्ण ही प्रेम है, उतरते हैं किस लिए? ये सब जो जीव है ये मेरे पार्ट पार्ट है, हमारे अंत है। हमें भूल करके जन्म जन्मांतरों से, करोड़ों जन्मों से, नाना प्रकार की जीवनियों में तृताप का भोग कर रहे हैं। कभी शुकर गधे होते हैं, कभी देवता देवी होते हैं, कभी कुछ होते हैं, कीड़े मकोड़े भी होते हैं, किंतु आज तक कोड़ी जन्मों में उनको सुख शांति नहीं मिली। इसलिए उनको प्रेम में उनका जीवन बनाने के लिए स्वयं प्रेम ही कृष्ण के रूप में। इसलिए हमारा धर्म प्रेम है। उद्धव संदेश में इसी प्रेम का दिग्दर्शन कराया गया है। वही प्रेम दो भागों में विभक्त होता है। कृष्ण स्वयं रसमय वस्तु, अखिल रसामृत सिंधु है, रस के समुद्र हैं, फिर भी उनका एक अंश है जिसको ह्लादिनी शक्ति कहते हैं,
पराशक्ति कहते हैं, अंतरंगा शक्ति कहते हैं। कृष्ण की इच्छा से वो भी मूर्तिमान रूप होकर के धारण करके कृष्ण के साथ में प्रकट हुई, उनका नाम है राधा। और उनकी काय जीव उसे प्रकट होने वाली जितनी गोपियां हैं वो कृष्ण ही हैं, कला हैं, उनकी कलाओं में से एक एक कला है, वो सब उतर करके ऐसी लीला करते हैं जिसको सुन करके समझ करके वर्णन करके लोगों का कल्याण हो सका, प्रेम हो सके, और प्रेम तत्व किसको कहते हैं जिसको समझ सके, नहीं तो जीवन सुखी और शांति नहीं हो सकता। हमारे देश में हिरण्यकश्यपु एक हो गए हैं, न रात में मरेंगे न दिन में मरेंगे, आकाश में नहीं मरेंगे, किसी महीने में नहीं मरेंगे, न अस्त्र शस्त्र से मरेंगे, न भूमि में न आकाश में, किसी महीने में भी नहीं मरेंगे। और ये भर पा करके त्रिकोण को कंपित करने लगा असुर सम्राट। हुआ क्या, वो सारे विश्व को अपने प्रभुत्व में रखना चाहता। आज यही दशा है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता उस देश का, उसके प्रेसिडेंट का, किंतु बात यही है इसमें सुख और शांति का संदेश मात्र भी नहीं है, स्वार्थ जघन्य खराब हो रहा है। तो वो प्रेम कृष्ण और गोपियों के रूप में आया, कृष्ण गोकुल में जन्म लिया, मथुरा में भी जन्म, पीछे करके मथुरा में उनके जन्म का इतिहास, गोकुल में खेले बड़े हुए, रास तक वहां पर किया, रास माने रस, कोई गंदी चीज नहीं, आनंदोत्सव। और इसके बाद में अत्याचारी असुर कंस को उन्होंने मारा, और तत्पश्चात फिर अपना एक दूत भेजा उद्धव को, जाओ हमारे माता पिता और हमारी प्राण से प्रिय जो गोपियां हैं उनको सांत्वना दो। किंतु सांत्वना का देने के लिए नहीं भेजा, विशेष कारण था, वो कारण ये था, गोपियां तो लाखों हैं, वे एक दूसरों से दुख बांट करके कुछ सांत्वना उनको मिल जाता है, किंतु कृष्ण के लिए गोपियों के विरह में, माता पिता के विरह में, विशेष करके गोपियों और राधा जी के विरह में ऐसे उत्कंठित है कि उनसे बातचीत करके किसी को अपना दुख बांट ले संभव नहीं। किंतु आप लोग थोड़ा सा गलत मत करिएगा, विप्रलंब क्या है और संभोग क्या है बड़ी कठिन, प्रेमी के दो पहलू हैं। यदि प्रेम में सब समय निरंतर मिलन रहे तो वो एक तरफा हो जाता है, उसमें कोई लहरियां नहीं, प्रेम जैसे समुद्र में लहरियां होती हैं ऐसे प्रेम में लहरियां होती हैं, अनुभव इत्यादि लहरियां हैं। यदि सेपरेशन कुछ होगा तब तब जब मिलन होगा तो आनंद प्रगाढ़ होगा, इसलिए प्रेम को दो भागों में बांटा, मिलन और जीरा। गोपियां तो कृष्ण उद्धव जी को भेजा है, इसलिए हमारे दुखों को बांटने वाला तो नहीं है जिसे अपना दुख कर करके बांटे, इसे अच्छा हो उद्धव जी को मैं भेजूं ब्रज में, और उस स्कूल में भेजूं जहां पर, उस विद्यालय में भेजूं जहां पर मैंने प्रेम का पाठ सीखा है। प्रेम की बहुत सी बातें हैं जो कृष्ण जो स्वयं भगवान है, सर्वांतर्ज्यामी सर्वशक्तिमान रस के समुद्र है, उनको भी पता नहीं है, क्योंकि वो विषय है प्रेम के, प्रेम के विषय हैं आज से गोपियां और राधा जी हैं। इसलिए प्रेम कैसा होता है, उनकी नजरों में कृष्ण कैसे नए नए रूप में दिखते हैं, उनके लिए धीरा कैसा होता है, उनके लिए आनंद कैसा होता है, ये गोपियों में दर मेंटेनर ऑफ पोषण ऑफ रस, रस के समुद्र है गोपियों, इसलिए उनमें ऐसे कुछ भाव हैं जो कृष्ण तक को भी अनुभूति नहीं है, इसलिए वो भेजते हैं। अच्छा जाओ तो जरा पढ़ाओ, तो वहां जाते हैं, वहां के प्रिंसिपल कौन है प्रेम पाठशाला प्रेम विद्यालय राधिका जी, प्रेम की मूर्त विग्रह, और उनके प्रेम की और दो जो चीजें हैं वो विशाखा ललिता इत्यादि,
एक डिपार्टमेंट कैसे रहते हैं, वहाँ बहुत तरह के सब्जेक्ट हैं, प्रेम के बहुत पहलू हैं, एक ही नहीं, तो उनको समझने के लिए देखते हैं। उद्धव जी गए और उद्धव जी ने जाकर के जो देखा तन्मय हो गए, एडमिशन नहीं मिला। जब दूर से विद्यालय तो देखे, लोगों ने थोड़ी सी परीक्षा दी, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए, उत्तीर्ण होने के बाद में विद्यालय को देख करके और सबको प्रणाम करके लौट आए कृष्ण के पास। प्रेम की अनुभूति नहीं हुई क्यों? गोपियों ने पूछा, उद्धव तुम आए हो, कृष्ण के यहां से आए हो, वो बड़े रसिक हैं, बड़े प्रेमी हैं, तो वहां से जब आए हो यहां, अच्छा ये बतला सकते हो कि प्रेम क्या होता है? ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़ा तो पंडित हो, कि प्रेम क्या चीज है? हमने सुना है एक प्रेम होता है स्वार्थ में और एक प्रेम होता है निस्वार्थ, प्रकृति से अतीत होता है, अप्राकृत प्रेम होता है, और एक होता है स्वार्थ। कैसे? एक उदाहरण से समझो। एक भिक्षुक है, भिक्षा करने के लिए गया, भिक्षा मांग ले लिया, अब फिर वहां नहीं रहेगा, चला जाएगा। भ्रमर है, फूलों में रस है, मधु है, इसलिए उस पर जाता है, बैठता है, मधु ले लिया, फिर अब नहीं जाएगा, वहां दूसरे पर जाएगा। एक वेश्या है, धनी उसका मूल उद्देश्य है, धनी नौजवानों को प्रेम में फंसा करके जब उसका सब पैसा हरण कर लेगी, फिर उसके तरफ में प्रेम नहीं होगा, उसे पूछेगी नहीं, उसे मार करके भगा दे। पुरुष भी ऐसा ही, लोगों से स्त्रियों से प्यार करता है, किंतु अपना काम हो जाने पर उसे कोई भी मतलब नहीं। मृग ये वनों में रहते हैं, वन में आग लग जाएगी वहां नहीं रहेगा, जब तक फल फूल छाया है तब तक। ये सब स्वार्थ प्रेम है। देखो उद्धव, हमारा उनका प्रेम जो था वो बड़ा ही विचित्र था, कोई स्वार्थ नहीं था, कोई भी स्वार्थ उनके प्रेम में, हम लोग उस स्वार्थ के लिए उनसे प्रेम नहीं किया, वो स्वभाव की प्रेम, और उनका भी हमारे प्रति किसी काम के लिए, उद्देश्य के लिए नहीं था। तो जिसका कोई प्रेम का कारण होता है, वो कारण ध्वंस हो जाने पर प्रेम समाप्त हो जाता है, और जिस प्रेम का कोई कारण ही नहीं है, कोई हेतु ही नहीं है, वो नष्ट नहीं होता। उद्धव तुम बतला सकते हैं कि हमारा उनका प्रेम कैसे नष्ट हो गया? उद्धव जी सूख खुद लाने लगे, उत्तर नहीं दे सके, बस देखते रह गए। यह प्रेम ये क्या चीज है, इसमें उद्धव जी का हम थोड़ा सा बतलाते हैं। उद्धव जी गए, पहले गोपियों से नहीं मिले, नंद बाबा से मिले। नंद बाबा जी ने देखा यह कृष्ण का एक मित्र आया है, मित्र ही नहीं, बृहस्पति के कुछ शिष्य हैं, कृष्ण के सखा हैं, कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के जनरल हैं, कृष्ण के सभी कुछ हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। है नंद बाबा जी ने उनको किसी प्रकार से कुछ भोजन कराया, क्या वो जिसको हम लोग पायस या खीर कहते हैं, कैसा? उनके घर में कुछ नहीं था, किसके लिए रसोई बनती? जिस दिन से कृष्ण मथुरा चले गए हैं, फिर रसोई नहीं बनी, बर्तन मजे हुए नहीं। यशोदा मैया कृष्ण के विरह में रोटी रोटी पागल और अंधी हो चुकी है, खाना पीना सब बंद है, चूल्हे बिना लीपे पूते हुए बर्तन ऐसे पड़े हैं, चूल्हों में मकानों ने जाल बुन दिया, सभी बड़े अधीर हो रहे हैं, गायें दूध नहीं देती, बछड़े अब दूध नहीं पीते, कोयल सुहगते नहीं वृंदावन, मोर नित्य नहीं करते, ऐसी वहां की स्थिति हो गई।
उद्धव जी देख रहे, नंद बाबा उनको ले गए खिलाया, थोड़ा सा विश्राम करने के बाद में बोले, बोलना चाहते हैं क्या, मेरा बेटा कैसा है, कृष्ण कन्हैया हमारा लाला कैसा है। किंतु जहां कृष्ण की स्मृति होती है तभी कल रात गदगद हो जाता है, आंसुओं की धार बहने लगती है। जरा सुनते हमें तो कुछ नहीं होता, किंतु हठात किसी की अपनी स्त्री चली जाए, बेटा चला जाए, तो देखो ये क्या होता है। कृष्ण के लिए दिव्य अनुभूति नहीं होती है, यह अनुभूति कराने ही शास्त्रों का विचार है। गुरु वैष्णव भगवान किसी के लिए आते हैं, कृष्ण से अपना विरह देखो, कृष्ण के लिए छटपटाओ, कृष्ण के लिए रो, यही जीव का मूल विचार है। उद्धव जी देखा नंद बाबा रो रहे हैं, कुछ नहीं पाते, जब कुछ नहीं पाया तो अंतर नहीं ये पूछा, उद्धव हमारा भाई वसुदेव जी कैसा है। वो बड़े खुशी की बात है कि 12 वर्ष तक कंस ने उनको जेल में बंद कर, देवी और वसुदेव जेल में बंद करके और उनको तरह तरह से यातनाएं दी, और उसका कर्म फल ऐसा है कि वो मारा गया, कृष्ण ने नहीं मारा, उसके कर्मों ने मारा। हम लोग भी अपने कर्मों का फल भोग करते हैं, यदि हम लोग भी ऐसा करेंगे तो अपने कर्मों का फल ऐसा ही भोग करना पड़ेगा, इसलिए मारा गया। अच्छा हुआ, देखो मैं कृष्ण को भूलने के लिए हम चेष्टा करते हैं, वन में जाते हैं, किंतु वन में जहाँ जाते हैं ऐसा कोई वृक्ष नहीं जहाँ पर उसने लीलाएं नहीं, बच्चों के साथ में खेला नहीं, जमुना के तट पर जाता हूँ उसको भूलने के लिए, तो उसके देखते हैं कि यहीं पर बच्चों के साथ में स्नान और खेल करता हूँ। गोवर्धन में जाता हूँ सर्वत्र ही उसके पैर नजर आते हैं, उसके खेले जाते हैं, उसके कुंज कहते हैं उसमें खेलता था, मैं बेचैन हो जाता हूँ, ये तस्कर हूँ। उद्धव जी ने देखा कि ओह कृष्ण ने मुझे इनको सांत्वना देने के लिए, क्या सांत्वना दो, यदि इस जीवन में मनुष्य जन्म में किसी को कृष्ण के लिए थोड़ी सी भी विरह हो और रोए, उनकी कथाओं को कहते हुए रोए, सुनते हुए रोए, उसका जीवन सुख में शांति में और महासौभाग्यवान। नंद बाबा जैसा आज कोई विश्व ब्रह्मांड में हम देखते हैं, माता पिता तो बहुत हैं, किंतु नंद बाबा जैसा, यशोदा मैया जैसा किसी का सौभाग्य नहीं है। क्यों, कृष्ण के लिए विरह करें जो सर्वत्र विश्व ब्रह्मांड का विनायक है, विश्व का सृष्टाओं का सृष्टा है, और उसके लिए रो रहे हैं, तो मैं कैसे कहूं कि नंद बाबा मत रोइए, तभी हमारा मुख बंद कर, और जब भी मैं कहूं नंद बाबा खूब रोइए तो सांत्वना तो होगी नहीं, फिर क्या होगा, मैं कहूं आखिर कहूं तो क्या। अंत में कहा जो कुछ मैं यही कहूंगा, विश्व में यदि किसी का जन्म सार्थक है और सौभाग्यवान है नंद यशोदा को, जो विश्व ब्रह्मांड के सत्ताओं के प्रभु को भी अपना बेटा मान करके और उसके लिए ऐसा सोच करके बोलेंगे, बाबा आनंद आप और यशोदा जी परम सौभाग्यवान और सौभाग्यवान। देखो जिसको तुम पुत्र समझ रहे हो वो पुत्र नहीं, वो तो विश्व ब्रह्मांड का सत्ताओं का भी ईश्वर है, इसलिए आप धैर्य धारण कीजिए, वो किसी का माता पिता नहीं है कुछ। नंद बाबा बोले मैं समझता हूं कि तुम्हारा अकल है कुछ, कृष्ण के साथ रहे, मैं देखता हूं कि तुम्हारे अकल के दांत भी नहीं गिरे, तनिक भी बुद्धि नहीं हुई, जो संसार में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आज उसको तुम सौभाग्यवान कर रहे हो, तनिक भी ज्ञान रहने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, कैसे कहा जो सौभाग्यवान। देखो हमारा एक बेटा ऐसा रूपवान गुणवान लवली जो संसार में किसी को ऐसा पुत्र नहीं होता, यहां तक कि गर्गाचार्य जी ने कहा था कि ये तो नारायण के समगुणों में है, और तुम करे कि वो साक्षात भगवान है, तो मैं भगवान को बेटे के रूप में पार करके दी, उनको रख नहीं सका, और उसके बिना आज भी जीवित हूं,
पिता एक था,
वो कौन? महाराज दशरथ।
राम के जाने के बाद में हाराम
हाराम और हाराम
तीन बार कहा, तीसरा बार हाराम नहीं कर सका, बस पीछे में प्राण पखेड़ हो गए। मैं मर क्यों नहीं रहा उसके पीरा। उद्धव जी नतमस्तक हो गए। ये तो नंद बाबा यशोदा मैया के साथ, नंद यशोदा जी तो कुछ बोल नहीं सकी, और फिर गोपियों के साथ जो वार्तालाप हुई उसकी तो बात भी किया कितना समय। हमको डॉक्टर ने कुछ मना भी किया है, अब कल वहाँ पर इसके बाद में हम कहेंगे। तब आप लोगों को विशेष धन्यवाद है जो इसके संबंध में आप लोगों ने पूछा और कहने के लिए हमको समय दिया है।
प्रश्न पूछना चाहते हैं?
हाँ जी, आपसे निवेदन है कोई संशय दूर करना हो तो जिज्ञासा हो तो कुछ पूछ लीजिए, किसी को भी एनी वन यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन। सब इतने प्रभावित हो गए हैं, कुछ सूझ नहीं आए। एक तो पूरा अशांति में है, कहीं कहीं मार सकता है, आपस आपस में या लड़ रही है, इसके शांति के लिए क्या काम करते हैं? हमारे शास्त्रकारों ने विशेष करके कृष्ण ने रामचंद्र जी ने जो हमारी संस्कृति के एक आदर्श हैं लोगों ने बतलाया है, विशेष करके गीता ने। गीता ने ये इसलिए बतलाया है बतलाया है थोड़ा सा मैं विशेष रूप में बतला रहा हूँ। ध्याय कामान सर्वान कुमन चरित निस्पृह निर्ममो निरहंकार स्वशांतिम अभिगच्छ। संसार के की कामनाओं को जिन्होंने संपूर्ण रूप से छोड़ दिया, जिन पुरुषों ने पुमाम जिन पुरुषों ने जिन जीवों ने संसार के जितनी भी कामनाएं हैं संसारिक परमात्मिक ने छोड़ दिया है, और निष्प्रिय संसार के सुखों से भी निष्प्रिय है, जो कुछ सुख और दुख आता है उसको सह लेता है। निर्ममो संसार के विषय से कुछ निर्मम हो गया है, निरहंकार मैं हूं पोजिशन वाला, धनवान हूं, विद्वान हूं, पहलवान हूं, राजनीतिक जो हूँ छोड़ दिया है, वो शांति अधिगच्छति उसको शांति, दूसरे को नहीं। न अन्यषा कथे तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्तसि चेत्। मूल चीज ये है, विश्व ब्रह्मांड का रचयिता वो है, एक ही ये ब्रह्मांड नहीं, कोटि कोटि जो आकाश में तारे चमक रहे हैं, एक एक ब्रह्मांड है, उसमें कितने सूर्य और कितने चंद्र हैं, सबका बनाने वाला एक ही है, हम उसका अंश हैं। तो यदि उसके हम शरण में जाएंगे तो क्या होगा? गच्छ कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, तम उसके ही, किसके? जो प्रभु संसार का है, सर्वभाव सब प्रकार से उसके शरणागत, सर्वधर्मान परिचर्य लौकिक जितने प्रकार के धर्म हैं सब धर्मों का परित्याग करके, हे भारत हे अर्जुन उसके शरण में जाओ, सब प्रसाद आप उन्हीं की कृपा से ही तुमको पराशांति पराशांति प्रेम स्थानम उनका प्रयोग और गति गति नाम शांति लिखा आनंद वो Thank you.
और
राज मैंने होता है आपका
Thank you.